पवित्र मातृ भाव दृष्टि भुक्ता वीर रक्षा के लिए हमें हनुमान जी को मुख आदर्श मान उसकी तरह प्रत्येक स्त्री की ओर यदि देखना ही हो तो मातृवत प्रदारेशु अर्थात पत्रय मात समान इसी पुत्र दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर न देखना ही पवित्र दृष्टि बनाए रखने का सर्व उत्कृष्ट मार्ग है। किसी स्त्री का ध्यान व स्मरण कदापि न करो। स्त्रियों के कोई चित्र किंबा मूर्ति की कभी न देखो, फिर स्त्रियों की ओर देखना तो दूर रहा। यदि किसी स्त्री का ध्यान आवे तो तत्काल अपने परमात्मा के फोटो का तथा अपनी माता का ध्यान करने लगो। अपने माँ व ईश्वर को उस स्त्री में देखने लगो। कोई अंग प्रत्यंग स्मरण हो तो उसी क्षण अपनी माँ के उसी अंग प्रत्यंग को उसमें स्थापित करो। निसंदेह तुम्हें अपनी करनी पर अत्यंत लज्जा एवं किरणा प्राप्त होगी और तुम उस स्त्री का नाशकारी ध्यान करना ही छोड़ दोगे। यदि कोई स्त्री सामने की आ जाए तो फौरन अपनी दृष्टि नीमी कर लो, दृष्टि ऊपर आगे न उठाओ और तत्काल मन में भगवान का नाम स्मरण अथवा इस महामंत्र का मंत्र जप करने लग जाओ। निस्संदेह तुम्हारी संपूर्ण पाप में पावने दग्ध हो जाएगी और मन पूर्णतया पवित्र बना रहेगा। मातृ नाम पवित्र है। मातृ नाम का जाप इतना श्रेष्ठ है कि को विचार पास आ ही नहीं सकता, अवश्य अनुभव कीजिएगा, परम आधार होगा। यदि किसी स्त्री से बातचीत करने का प्रसंग ही आवे तो बहुत कम बात करो और उन्हें हा बहन, हे बहन, हे माँ इत्यादि पवित्र नामों से संबोधित करो, परंतु हमेशा दृष्टि को नीचे बनाए रहने की बात कभी मत भूलो। इस बात को अपने हृदय पट पर अंकित कर रखो। स्त्री समाज में आवागमन सहसा ना करो। स्त्रियों से एकांत में बातचीत करना सर्वथा त्याग दो, क्योंकि वैसा करना स्त्री पुरुष दोनों के लिए हानिकारक व नाशकारक है। भगत बामन कहते हैं, जब भी मात बगनी स्वता तो न बैठे पास पर बुला है जे इंद्रियों करो न तुम विश्वास। श्री लक्ष्मण की तरह प्रत्येक स्त्री को जगत जननी जानकी जी का ही रूप समझकर मातृभाव से उसे मन ही मन प्रणाम करो और सियाराम मैं सब जग जानी ऐसा पवित्र चिंतन करने लगो। स्त्रियों को पर नर तात समान ऐसी शुद्ध दृष्टि रखनी चाहिए। निसंदेह आधार होगा मातृ चिंतन या ईश्वर चिंतन जय विषय चिंतन को मिटाने की एक बड़ी ही उत्कृष्ट दवा है। आप भी उसका सेवन कीजिए और अपना आधार कर लीजिए। जब तक हमारी दृष्टि बंद है हम निद्रित हैं, तब तक बगल में पड़े हुए महाविष्कार काले सांप से भी हम नहीं डर सकते, पूर्ण निर्भर बने रहते हैं। परंतु दृष्टि पड़ते ही उसका कितना भयंकर परिणाम होता है वह तत्काल स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही जब तक किसी स्त्री की ओर हम पल को उठा के नहीं देखेंगे, उसका मुंह काला है या बुरा है ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक यदि प्रत्यक्ष हमारे सामने उर्वशी पिया कर खड़ी क्यों न हो जावे, वह भी हमें एक रत्ती पर डगा नहीं सकती, हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती। परंतु दृष्टि जाते ही नष्ट दृष्टि पतंगे की तरह उस मनुष्य के बाहर भीतर आग लग जाती है। श्रीमान शंकराचार्य जी कहते हैं, दोषेण तीव्रो विषा कृष्ण सर्प विषादपि विषम गृहन्ति भोक्तारं चक्षु पाशहम वे चूड़ामणि। अर्थात काले सर्प के विष से भी बढ़कर विष जान अत्यंत भयानक है। विष तो पी लेने पर मनुष्य मरता है, पर यह विष विषय विष इतना उग्र है कि केवल उसकी ओर देखने मात्र ही से मनुष्य धूल में मिल जाता है। भगत दास बामन ने क्या ही ठीक कहा है, यदि अही विष तो काटे चढ़े जय दृग वक्त चढ़ जाए, ज्ञान ध्यान बल धर्म को प्राण सहित खा जाए। स्त्री के सारे शरीर में जहर भरा हुआ है, ऐसा कहने की जगह यदि जो कहा जाए कि सब विष दृष्टि ही में भरा हुआ है तो बहुत ही यथार्थ होगा। सारा संसार यदि आपको कंटक में ही मालूम होता है तो स्वयं अपने पैरों में जूता डालकर बाहर निकलना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। शिकायत करना मेरी मूर्खता है, क्योंकि आप समस्त संसार को निकंटक नहीं बना सकते हैं और न उसे चमड़े से ही ढक सकते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत को आप नारी रहत तो बना नहीं सकते, हाँ अपनी ही पाप में दृष्टि को आप अवश्य पवित्र बना सकते हैं। इसी में आपकी बुद्धिमानी है और सदगति है। स्त्री जाति पर भी व्यर्थ कुत्सित कटाक्ष करना मेरी मूर्खता है, अतः दृष्टि को नीचे रखने ही से हम विषय के हलाहल विच से बच सकते हैं। जब तक हम अपनी दृष्टि उठाकर किसी स्त्री पर नहीं डालेंगे तब तक हमारा ब्रह्मचर्य निसंदेह अटूट बना रहता है। जय अनुपक्षद बात है, आप भी इसका अवश्य अनुभव कीजिए, निसीम कल्याण होगा। एक बार शेष जी बीमार पड़े, बहुत दवा की परंतु आराम नहीं हुआ। अंत में धनवंतरी ने शेष जी की आंखें बंदी और फिर दवा दी, तब बहुत जल्दी ठीक हो गए। मित्रों, शेष जी के नेत्र क्यों बांधे गए जानते हो? सुनो, जब तक शेष जी के नेत्र खुले थे तब तक उनके नेत्रों में निकलने वाली विषमयी ज्वालाओं से सब औषधि बिल्कुल विष बन जाती थी। अमृतवली भी विषवली बन जाती थी। नेत्र जब बंधे गए तभी दवा बनी रही और वे चंगे हो गए। इसी प्रकार जब तक हम अपनी विषय पूर्ण पापी दृष्टि को बंद अर्थात नीची नहीं करेंगे तब तक सात जन्म में भी हमारा सुधार नहीं हो सकता। अतः चंचल चित वालों को पर स्त्री की ओर देखना एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग ही देना चाहिए। जो पर्ण करके उसके अनुसार चलेगा उसको अवश्य ही मेवा मिलेगा, उसका वश ही उधार होगा। और जो मोह वश पर स्त्री तर तकेगा उसको उनका ही निमित्त पाप और पिपसाच वश ही खा जाएगा डालेगा। विषय दृष्टि को बंद रखने से किसी स्त्री की ओर बिल्कुल न ताकने से पापी मनुष्य का भी बहुत जल्द सुधार हो सकता है। जय नीचे अर्थात नम्र दृष्टि से ही ऊंचा से ऊंचा बन सकता है। जो गीत या ऊंट की तरह किसी स्त्री की ओर गर्दन उठा के जा घूम के ताकेगा वह फौरन नरक कुंड में जा गिरेगा। नीच पुरुष सती स्त्रियों की ओर भी पाप की दृष्टि से देखा करते हैं, फलाया से नार किए पुरुषों का कैसे पला हो सकता है। पावदास ब्राह्मण कहते हैं, चटक मटक नित कुमतवन तखत चलत चंगोर, ब्राह्मण ऐसे अदम नर पड़े नरक के में घोर। ऋषिमुख पर्वत पर जब श्री सीता देवी जी के गहने श्री लक्ष्मण जी के सामने जांचने के लिए रखे गए, तब श्री लक्ष्मण जी क्या ही उत्कृष्ट उत्तर देते हैं। नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले, नूपर तो अवि जानामि नित पाद अभिबंधनात्। इन सब गहनों में केवल नूपरी मेरे पहचान के हैं, जो रोज बंधन करते समय मैं श्री सीता माता के चरण में देखता था। इन क्यूर कुंडलों की ओर अन्य गहनों को मैं नहीं जानता, क्योंकि चरणारविंद को छोड़कर मैंने दृष्टि उठाकर कभी ऊपर देखा ही नहीं। अह तन्न है श्री लक्ष्मण जी, आपकी यह आदर्श शिक्षा यही कारण था कि आप 14 वर्ष पर्यंत श्री सीता देवी जैसे तरलोक सुंदरी के साथ रहते हुए भी अपने ब्रह्मचर्य का अटूट पालन कर सके और मेघनाद जैसे परबल शत्रु को मार सके। मेघनाद तो केवल इंद्रजीत ही था, परंतु आप उससे भी बढ़कर इंद्रजीत थे। श्री मत शंकराचार्य कहते हैं, जतन जगत कीन मनु ही जैन सत है, एकमात्र इंद्रिय जात ही संपूर्ण तरलोक की ज्योत। इंद्रिय जीत ही तरलोक को जीत सकता है। जो तुम भी अपनी दृष्टि श्री लक्ष्मण जी की तरह पवित्र बनाओ, प्रत्येक स्त्री के सामने दृष्टि के सदैव नीची ही रखो और मन में ईश्वर का चिंतन भाव मां इस पवित्र महामंत्र का टूट जप शुरू कर दो। तुम ब्रह्मचर्य का सच्चा पालन कर सकोगे और काम रूपी मेघ नाद को निश्चय पूर्ण मार सकोगे। सारांश यह है कि किसी स्त्री की ओर न देखना ही ब्रह्मचर्य रक्षा का परम श्रेष्ठ रहस्य है, उपाय है। निर्मोह से सत पूर्ण ज्ञान व निश्चय होता है और सत्व के निश्चय ज्ञान से मनुष्य जीवन मुक्त होता है, अर्थात इस संसार से तर जाता है। तब संसार में आत्मोन्नति के लिए कितने साधन हैं, उन सब में सत्संग सबसे श्रेष्ठ उपाय है। सत्संग जय शब्द अत्यंत महत्व का है। सत्संग में संसार की तमाम उन्नति कर बातों का समावेश होता है, जैसे पवित्र ऊंचे विचार करना, पवित्र स्वदेशी खद्र पहनना, यदि अनंत तातों का समावेश होता है, वैसे ही कुसंग में संसार की तमाम स्वयं पर नशी बातों का समावेश होता है। सत्संग में मनुष्य देवता बनता है और कुसंग में मनुष्य राक्षस बन जाता है। भगत तुलसीदास जी कहते हैं, को न कुसंगत पाए न साई, सच है कुसंग से आज तक बड़े बड़े शीलवान गुणवान और होनहार बालक बालिकाएं तथा स्त्री पुरुष तूल में मिल गए हैं। कुसंग का प्लेग महान भयानक होता है। जंगली जानवर का या काले सांप का भी साथ बहुत अच्छा है, उससे मनुख की केवल मृत्यु होगी, परंतु दुर्जन का संग महान दुर्गतिकर है। जब मनुष्य की नीच जोनियों में बा नरक में ही डालने वाला है। पंडित विष्णु शर्मा कहते हैं, वरं प्राण त्यागो न पुरुषा मान पुरुषामान अमुपोगमान पुरुषामान अनुपोगमान। प्राण त्याग देना अच्छा है परंतु नीचों के पास जाना तक बुरा है। जैसा संग वैसा रंग, यही प्रकृति का कायदा है। तुवाओं के संग से सफेद मकान भी काला पड़ जाता है। लता का कीड़ा लता ही के तुल हरा बन जाता है। जैसे ही दुर्जन के साथ भला मनुष्य भी दुर्जन बन जाता है, और सज्जन के साथ सज्जन कामी के संग काम आगे कामी के संग काम जाके पै जागे। कायर के संग साथ कायर के संग सूर भागे पै भागे। काजर की कोशी में कैसी हूँ सियानू जाए, एक रेख काजर की लाग है पै लाग हूँ। कवि का यह कथन अक्षरशा सत्य है कि नीच पुरुष अपनी तुल अपने मित्रों को भी नीच पापी और दुरात्मा बना डालते हैं, और सतपुरुष अपने जैसे अपने मित्रों को भी पुणात्मा बना देते हैं। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कुसंग से नर की प्राप्ति होती है। सत्संग की महिमा और कुसंग की अधमता किसी से छिपी नहीं है। कुसंग से मनुष्य जीते जी नरक का सा अनुभव करने लग जाते हैं। इसी कारण से गोस्वामी कहते हैं, बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहे विदाता। अता कल्याण चाहने वाले को कुसंग एकदम प्रतिज्ञा पूर्व त्याग देना चाहिए, और सत्संग को यत्न पूर्व प्राप्त करना चाहिए। मित्रों से मित्र रहते रहना ही लाभ गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुसंग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों मलियां मिट हो जाते हैं, और अंत में महान अधोगति होती है। परंतु सत्संगत से चारों पुरुषार्थ अनायास सज जाते हैं। याद रखो, राजपाट गज तन स्त्री पुत्र आदि सब कुछ मिलेंगे, परंतु सत्संग मिलना परम दुर्लभ है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह गोस्वामी जी का वचन अक्षरशा सत्य है कि मोक्ष के सब साधन एक तरफ और सत्संग दूसरी तरफ, दोनों में सत्संग का ही दर्जा बहुत ऊंचा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिल जो सुख लव। सत्संग सच है, सच शुद्ध है, सत्संगत पाई कैसे, जैसे पारस परस भदात सुहाई। जैन तां सत्य है कि संपूर्ण दुराचार व्यभिचार की जड़ एकमात्र कुसंगति ही है। अतः ब्रह्मचारियों को तथा अवैधेशकों को चाहिए कि कभी जीव से बुरी बात न कहें, कान से बुरी बात न सुने। जैसे कजली होली की गालियां, लापते पंदे गीत आदि आंख से बुरी चीज न देखें। जैसे नाटक तमाशा सिनेमा नाच रंग रासलीला न देख रासलीला पदे चित्र आदि पैर से बुरी जगह न जाए, हाथ से बुरी चीज ना छुवे, और मन से विषय चिंतन अर्घ न करें। बल के कुभावों को नष्ट करने वाले परमात्मा का ही शुभ चिंतन व ध्यान अन्वेषण करें। बस फिर तुम आत्मा ही हो, और तुम्हें यही पर सच्चा स्वर्ग है। एक समय भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुर्जनों के साथ स्वर्ग में बलि ने तत्काल उत्तर दिया कि सज्जनों के साथ नरक में ही जाना पसंद करूंगा। पूछा क्यों? कहते तब जवाब मिला कि जहां पर सज्जन है वहीं पर स्वर्ग है, जहां पर दुर्जन है वहीं पर नरक है। दुर्जन को स्वर्ग को भी नरक बनाकर छोड़ते हैं और सज्जन पुरुष नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं। सत पुरुष जहां जाएंगे वहीं पर स्वर्ग बन जाता है। सत्संगा परम तीर्थ सत्संगा परम पदम तस्या मात सर्वं परित्याज्य सत्संगा सततं कुरु। सत्संग ही परम पवित्र तीर्थ है, सत्संग श्रेष्ठम पद अर्थात मोक्ष है। इसलिए सब छोड़ छाड़ कर काया वाचा मनसा से नित सत्संगत का ही सेवन करो। जब जब चित्त में नीच विषय विकार उत्पन्न हो तब तब उस परिस्थिति का एकदम त्याग कर सत्पुरुषों या सुमित्रों के पास तुरंत जा बैठो। वहां जाते ही तुम्हारी संपूर्ण नीच वृत्तियां तत्काल दब जाएगी और मन वातन दोनों शांत व पवित्र बन जाएंगे। यह स्वयं अनुभव सिद्ध बात है, आप भी इसका अनुभव कर अपना उद्धार कीजिए। एकांत जिसके चित्त में कोई विचार उत्पन्न होते हैं ऐसे दुर्बल चित्त वाले व्यक्ति को एकांत वास पदार्पण करना चाहिए। उन्हें सदा इष्ट मित्र माता पिता भाई इनके समीप ही रहना चाहिए, इसी में कल्याण है। सद ग्रंथ अवलोकन भक्ता बजान मित्र व सज्जन संगति दुर्लभ हो वहां सद ग्रंथ भी सज्जनों और मित्रों की संगत करनी चाहिए। सद ग्रंथों द्वारा हम संसार के एक से एक महात्मा की संगति रात दिन कर सकते हैं और उनसे जब चाहे तब तथा जितने मर्तवे चाहे उतने मर्तवे वार्तालाप कर सकते हैं और अपना यथेष्ट समाधान कर सकते हैं। सदग्रंथ ही इस लोक के चिंता मणि है। सदग्रंथों के पठन पाठन से सब कुछ चिंताएं मिट जाती है, संशय कुसास भाग जाता है और मन से सद्भाव जागृत होकर परम शांति प्राप्त होती है। ज्ञान अग्नि से मनुष्य का सब पाप जल जाता है और मनुष्य परमात्मा से परमात्मा और व्यभिचारी से ब्रह्मचारी बन जाता है। ज्ञानानंद के सामने विषयानंद फीका पड़ जाता है। बिना सिद्धांत वाक्यों के चरण किए किसी का चरण कदाप शुद्ध नहीं हो सकता। चरण की महिमा अपरंपार है। बिना देखे और सुने किसी का आधार आज तक ना हुआ है ना हुआ था। हमें रोज प्रातः काल और सायंकाल किसी पवित्र ग्रंथ को पवित्रता और एकाग्र पूर्वक शुद्ध जगह बैठ कर थोड़ा ही नियमित पाठ करने का नियम बांध लेना चाहिए। पाठ को शांति और प्रसन्नता पूर्वक पूरा किए बिना अनुग्रहण न करेंगे ऐसा एक निश्चय कर लेना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर लेने से मनुष्य के भीतर एक अद्भुत दैवी शक्ति जागृत होती है जो उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचा देती है। गीता व रामायण का पाठ करना अत्यंत उपकारी होगा। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए योग वशिष्ठ वैराग मुमुक्षु प्रकरण उपदेश रत्नाकर ज्ञान वैराग प्रकाश श्री राम कृष्ण शंकराचार्य ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਮਣੀਮਾਲਾ ਦਾਸ ਬੋਧ ਜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤਿ ਹੀ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਨਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਨ ਔਰ ਜਲ ਰੋਜ਼ ਖਾਇਆ ਔਰ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸੀ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਪਨਿਆਸ ਉਪਨਿਆਸ ਆਦਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਦਿਆ ਸਲਾਈ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਪੁਸਤਕੇ ਬੜੇ ਸੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੋ ਵੀ ਵਿਵਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਚਿੱਤਰ ਬਾਲਕ ਬਾਲਕਾਏ ਵੀ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਕੇ ਪਠਨ ਔਰ ਸ਼ਰਵਣ ਸੇ ਦੁਰਚਰਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਅਤਾ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ ਸਰਵਤਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਅੱਛੇ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਕਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਮਿੱਤਰੋਂ ਔਰ ਭਾਈਓਂ ਸੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੂਰਖਤਾ ਸੇ ਕੋਈ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੋ। ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਕਾਰਨ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਤਾ ਜਿਹਨੇ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵੇ ਆ ਗਏ ਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਂਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਵੀ ਗੁਣਾਤਮਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈਂ। ਵੇ ਮੁਰਦਾ ਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਫੂਕ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰ। ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਚੇਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਬੇਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਚਰਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜਾਵੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵ ਕਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਕੇ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਾਰਕ ਮੰਤਰ ਹੈ।